हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की भगवत कक्षा में। आज हमारे बीच में बहुत ही विशेष भक्त उपस्थित हैं। हमें बड़े हर्ष के साथ हर्ष हो रहा है बताते हैं कि बीच में उपस्थित हैं हिज ग्रेस कृतो प्रभु हरि हरि बोल। जी ने बहुत ही लंबे समय के बाद हम पे कृपा की है और काफी समय से मैं ट्राई कर रहा था लेकिन मैं मिस कर रहा था और प्रभु जी निकल जाते थे दिल्ली से। और साथ ही में हम स्वागत करेंगे हर ग्रेस अमृत के लिए माता जी का भी। तो आप भक्त प्रभु जी पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं और अपनी सरलता से सबका हृदय जीत लेते हैं। तो आज हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त होगा इनके संग का। आप सबसे निवेदन है कृपया करके बड़े ध्यान पूर्वक इनके मुखारविंद से भागवत प्रवचन सुनिए। अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर कर दीजिए। हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 10 श्लोक संख्या 17 से लेके 20 तक। तो 20 श्लोक संख्या 20 दोहराते हैं और पढ़ेंगे 17 से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 10 श्लोक संख्या 17 से लेके 20 तक। मेरे पीछे दोहराइए प्लीज। ते वे सब अनेक सैनिकों के सेनापति रघुपते भगवान रामचंद्र के अभिपत्य शत्रु का पीछा करते सर्वे सभी द्वंद्वम लड़ते हुए वरुथम रावण के सैनिकों को इबा हाथी पत्ती पैदल सैना रथ रथ अश्व घोड़े युद्ध योद्धाओं से जग्न हो उन्हें मार डाला। ध्रुमय बड़े बड़े वृक्षों को फेंक कर गिरी पर्वत की चोटियों गदा गदा इशुभि बाणों से अंगद आद्या अंगद इत्यादि भगवान रामचंद्र के सारे सैनिक सीता सीता देवी का अभिमर्ष क्रोध से हत ध्वस्त मंगलम जिसका कल्याण रावण ईशान रावण के अनुयायियों को ते अनिकम पार गुपे तेरभि प्यतर्वे द्वंदे वरुत भी पतिरता स्वयोधये जग्नुर्मुमैर गिरिगदय सुगि वीर गदगद्या सीता भी मरहस्त मंगला रावणेश बोलिए। भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्लोक संख्या 17 से शुरू करेंगे। सवानरेत्र बलरुद्र विहार कोष्ठ श्री द्वार गोपुर सदवीटका निर्वज्यमान देशण ध्वज हेम कुंभ श्रृंगाटका गजकुलेर हृदनी वधूर्ण लंका के प्रवेश करने के बाद लंका में प्रवेश करने के बाद सुग्रीव नील हनुमान आदि वानर सेनापतियों के नेतृत्व में वानर सैनिकों ने सारे विहार स्थलों अन्न के गोदामों खजानों महलों के द्वारों नगर के फाटकों सभा भवनों महल के चच्चे और यहाँ तक कि कबूतर घरों में अधिकार कर लिया। जब नगरी के सारे चौराहे चबूतरे झंडे तथा गुंबद पर रखे सुनहरे गमले ध्वस्त कर दिए गए तो समुचित लंका नगरी उस नदी के सदृश प्रतीत हो रही थी जिसे हाथियों के झुंड ने मत दिया हो। श्लोक संख्या 18। रक्षा पति तदवलोक्य निकुंभ कुंभ दुम्राक्ष दुर्मुख सुरांतक नारंतकादिन पुत्रं प्रहस्तम तिकाय विकंपनादिन सर्वानुगांसं हिनोत्तथ कुंभकर्णम। जब राक्षसपति रावण ने वानर सैनिकों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों को देखा तो उसने निकुंभ कुंभ दुम्राक्ष दुर्मुख सुरांतक नरांतक तथा अन्य राक्षसों एवं अपने पुत्र इंद्रजीत को भी बुलवाया। तत्पश्चात उसने प्रहस्त अतिकाय विकंपन को और अंत में कुंभकर्ण को बुलवाया। इसके बाद उसने अपने सारे अनुयायियों को शत्रुओं से लड़ने के लिए उसकराया। तामया तुदान प्रुतनाम शिशूल चाप प्रासर दृष्ट शक्ति सरतो मरखंग दुर्गाम सुग्रीव लक्ष्मण मरुत्सुत गंधमाद नीलांग दर्शक पनसादि पीर अन्वितो गात। लक्ष्मण तथा सुग्रीव हनुमान गंधमाद नील अंगद जांबवंत तथा पनस नामक वानर सैनिकों से गिरे हुए भगवान रामचंद्र ने उन राक्षस सैनिकों पर आक्रमण कर दिया जो विविध अजेय हथियारों से यथा तलवारों बालों बाणों प्रासों रुष्टियों शक्तिबाणों खगों तथा तुमरों से सज्जित थे। आज का श्लोक अंगद तथा रामचंद्र के अन्य सेनापतियों ने शत्रुओं के हथियारों पैदल सैनिकों घोड़ों तथा रथों का सामना किया और उन पर बड़े बड़े वृक्ष पर्वत श्रृंग गदा तथा बाण फेंके। इस तरह भगवान रामचंद्र जी के सैनिकों ने रावण के सैनिकों को, जिनका सौभाग्य पहले ही लूट चुका था, मार डाला, क्योंकि सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही रासित हो चुका था। तात्पर्य, भगवान रामचंद्र ने जंगल में जितने सैनिकों की भर्ती की, वे सभी बंदर थे और उनके पास रावण के सैनिकों से लड़ने के लिए कोई समुचित साज सामान न था, क्योंकि रावण के सैनिकों के पास आधुनिक युद्धास्त्र थे, जबकि बंदरों के पास फेंकने के लिए पत्थर, पर्वत श्रृंग तथा वृक्ष ही थे। केवल भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण कुछ बाण चला रहे थे, किंतु क्योंकि रावण के सैनिक माता सीता के साप से रासित हो चुके थे, अतएव सारे बंदर उन्हें केवल पत्थर एवं वृक्ष चलाकर मारने में समर्थ हो चुके। बल दो प्रकार का होता है, दैव तथा पुरुषाकार। दैव बल आध्यात्म से प्राप्त किया जाता है और पुरुषाकार बल अपनी बुद्धि तथा शक्ति से प्राप्त किया जाता है। आध्यात्म बल भौतिकतावादी बल से सदैव श्रेष्ठ होता है। भगवान की कृपा पर अवलंबित होकर मनुष्य को अपने शत्रु से युद्ध करना चाहिए, भले ही वह आधुनिक हथियारों से युक्त क्यों न हो। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, माम अनुस्मर युद्धचा, मेरा चिंतन करके युद्ध करो, हमें शत्रु से अपनी शक्ति भर लड़ना चाहिए, किंतु विजय पाने के लिए भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा, सॉरी अंगद तथा रामचंद्र के अन्य सेनापतियों ने शत्रु के हाथियों पैदल सैनिकों घोड़ों तथा रथों का सामना किया और उन पर बड़े बड़े वृक्ष पर्वत सुन गदा तथा बाण फेंके। इस तरह भगवान रामचंद्र जी के सैनिकों ने रावण के सैनिकों को जितना सौभाग्य पहले ही लूट चुका था मार डाला, क्योंकि सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही रासित हो चुका था। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनकात्मजा उर्वतु मारुतु यश्यतम वंदे रघुनंदनम। तो रघुनंदन रामचंद्र की कथा में मैं कच्चा हूँ, तो माफ कीजिए, रामायणी को बुलाना चाहिए, कहीं भक्त रामायणी है बड़े मंदिर में। वैसे तो बचपन में मेरे इस रामचंद्र भगवान ही रहे, क्योंकि मेरा कुटुंब है गुड़िया वैष्णव, लेकिन रामचंद्र जी का के उपासक थे। लेकिन मुझे रामायण का इतना अभ्यास नहीं है, तो माफ कीजिए। तो संक्षिप्त में रामायण इस प्रकार है कि महाराज खटवंग काय वंश है। खटवंग महाराज ने अपना अत्यंतिक कल्याण कुछ क्षणों में ही किया था। तो महाराज खटवंग के पुत्र हैं दीर्घबाहु, और उनके पुत्र हैं रघुवंश, और रघु के पुत्र हैं अजय, और अजय के पुत्र हैं दशरथ महाराज। दशरथ महाराज बहुत ऊंचे घराने के, बहुत ऊंचा राज परिवार में जन्म है और भगवान के भक्त हैं, और रघु राजा भी। तो ये सूर्य वंश है और दूसरा चंद्र वंश, ये सब प्रजा दो वंश में है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ चंद्र वंश में, और भगवान रामचंद्र का अवतार हुआ रघुवंश में, और यही प्रजा हम सब प्रजाएं इन दो चंद्र और सूर्य वंश की है, बंदर की प्रजा नहीं है। बंदर की प्रजा भारतवर्ष छोड़ के, तो भगवान अपना अवतार पवित्र वंश में लेते हैं। पवित्र वंश जो भगवान के भक्त वंश होता है, तो रघुवंश, तो रघुवंश में दशरथ महाराज काफी उम्र तक उनको कोई विस्तार प्रजा नहीं हुई, कोई बालक नहीं हुए। तो उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ में यज्ञ पुरुष प्रसन्न होते हुए उनको वर देते हैं कि एक खीर अपनी रानियों को अब बांटने पर आपको प्रजा होगी। तो आधे खीर कौशल्या और आधी की आधी दूसरी रानियों को। तो चार भाई रूपी प्रजा दशरथ महाराज को हुई, उसमें मुख्य है रामचंद्र भगवान। ये चारों विष्णु भगवान के अवतार हैं, चारों मिला के। तो महाराज दशरथ बहुत खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं अयोध्या में, उत्सव और आनंद मंगल हो रहा है। और चारों भाई कौशल्या भी कहती है छोटे गर्भ में आए तो घर में आने से पहले दर्शन दिया जब भगवान ने, तो कहते हैं कि ऐसी लीला से मुझे आनंद नहीं होगा, आप मेरे शिशु बन गए। शिशु बालक बनो, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो शिशु बनो और मेरे गर्भ में आओ तो मुझे गर्भ में भी आनंद मिले, और जब शिशु बन के आओगे तो आपकी बाल लीलाओं से भी मुझे आनंद मिले। तो भगवान की लीला है बचपन में, बाल्यावस्था में लीला है, अति मनोहर है। और भगवान प्रांगण में नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कौशल्या मैया और दूसरी मैया भी उनका आनंद उठाती है। तो ये दूसरे धर्म और हमारे धर्म में, हमारा धर्म है मतलब सबका धर्म है वैदिक धर्म, लेकिन दूसरे धर्म वाले भूल चुके हैं। तो वैदिक धर्म में ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भगवान अपनी लीला हमारे स्तर पर करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान, आनंद का आदान प्रदान तब होता है जब बराबरी हो। तो भगवान बराबर होके आते हैं, ये वैदिक धर्म में विशिष्टता है। निराकार ब्रह्म, ब्रह्म निराकार है लेकिन प्लस मच मोर, भगवान लाइट है, भगवान तेज है, ब्रह्म ज्योति है, लेकिन प्लस मच मोर, भगवान ब्रह्म है लेकिन प्लस मच मोर। तो ये हमारा सौभाग्य है जो दूसरे लोग नहीं मानते, ये भगवान हमारे बराबर होके आते हैं। तो प्रेम का आदान प्रदान में कुछ आनंद होता है। तो भगवान कौशल्या माता, कैकेयी माता, सब माताओं को आनंद देते हैं। और जैसे ही भगवान युवा 12-16 साल के हुए, प्रेम बहुत बह रहा है कुटुंब में, दशरथ महाराज में, और नगरवासियों में, इतने में ही एक ऋषि आते हैं जो यज्ञ करते हैं। ऋषि का नाम क्या है? विश्वामित्र, विश्वामित्र ऋषि आते हैं। यस, विश्वामित्र ऋषि को जब आते हैं तो दशरथ महाराज पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कि आपका यह जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर कट गया कि नहीं? प्रभुपाद जी उस श्लोक कोट करते हैं, परजजात, क्या कहते हैं इसमें याद है प्रभुपाद जी कोट, कि आपके जन्म मृत्यु, हाँ जन्म मृत्यु मैं भूल गया, अभी थोड़ी याददाश्त कम होती जाती है। बहुत सुंदर सुंदर सुख है। एनीवे तो ऋषि का स्वागत करते हुए दशरथ महाराज कहते हैं कि आपका जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर टूटता जा रहा है ना, तो ये स्वागत का तरीका था पुराने जमाने में। तो ऋषि आते हैं, विश्वामित्र मित्र बन के नहीं आते हैं, दशरथ महाराज का कि जान चली गई है ना। दशरथ महाराज भगवान से चारों पुत्रों से प्रेम करते थे, तो उनके उनके यज्ञ में राक्षस लोग बाधा डालते थे, इसलिए भगवान को उन राक्षसों को मारने के लिए मांगने के लिए आते हैं। तो दशरथ महाराज कहते हैं मैं आता हूं, अब इन बालकों को छोड़ दीजिए। लेकिन भगवान का विवाह करवाना था ऋषि विश्वामित्र ऋषि को, तो नहीं हमें तो बच्चे ही चाहिए। तो चारों बच्चों को ले जाते हैं, दशरथ महाराज का ना होते हुए हा होते हुए वैसे कैसे दशरथ महाराज मान गए। तो बाद में सब राक्षसों का जो हवन में यज्ञ में जो दखल डालते थे उन लोगों का संहार किया और पहुंचे जनकपुरी, जहाँ जनक महाराज अपनी बेटी सीता मैया का विवाह कर रहे थे स्वयंवर। तो स्वयंवर की लीला आती है। स्वयंवर से पहले सुंदरकांड शुरू होता है, भगवान और सीता मैया एक सुंदर उद्यान में मिलते हैं और खूब सुंदर वर्णन है सुंदरकांड का। और बाद में स्वयंवर में रावण जैसे कई राक्षस और कई लोग ट्राई करते हैं, लेकिन शिव धनुष इतना बड़ा और इतना लंबा चौड़ा वजनदार जो 300 लोग उठाए फिर भी नहीं उठ पाए, इतना भारी धनुष भगवान रामचंद्र उठाते हैं ऐसे करके जैसे रुई उठा लिया। और उनको उनकी दूरी चढ़ाते हैं तो टूट गया शिव धनुष, टूट गया और सीता मैया रामचंद्र से वरण करती है। और बाद में दूसरे तीनों भाई का भी विवाह जनक महाराज अपनी पुत्रियों से कर देते हैं। तो चारों भाई वापस आते हैं अयोध्या, और अयोध्या वापस आते हैं तो बाद में कई कांड शुरू होता है कि भगवान को राज्याभिषेक करना था, उम्र लायक हो गए, राज्याभिषेक होने वाला था। तो सहयोगिता थी तो मंत्रा के को भ्रमित करती है कि ये सारा राज्य रामचंद्र को मिलेगा और कौशल्या राजमाता बनेगी, सीता राजमाता बनेगी। भारत का कौशल्य का मंत्र उनकी बातों में आ जाता है और उससे पहले की कथा है कि युद्ध में जब दशरथ महाराज लौट रहे थे तो रथ का पहिया निकलने जा रहा था तो कैकेयी ने अपनी अंगुली से रथ का पहिया रोक दिया। कई मंत्रा की बातों में आ गई और उन्होंने दशरथ महाराज से ये वर मांगे। पहला वर जब मांगा कि रामचंद्र को 12 वर्ष का वनवास हो, 14 वर्ष का वनवास हो, तो दशरथ महाराज बहुत दुखी हो गए कि ये क्या आप मांग रही हो, कुछ भी मांगो लेकिन रामचंद्र को वनवास ये सही नहीं है, कोई कसूर नहीं है और मेरा प्राण रामचंद्र उनको वनवास क्यों। तो कहके की तो थी क्योंकि अगर रामचंद्र वहां रहेंगे तो लोग उनको प्यार करते हैं और अनऑफिशियली राजा तो वही रहेंगे, इसलिए वनवास। और बाद में कर्ण सिंह सुन होता है कि सीता मैया भी साथ में चलती हैं और लक्ष्मण क्रोध बलराम का अवतार है, लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं और बाद में वो भी साथ में जाते हैं, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला, तो उनको छोड़ के अकेले लक्ष्मण जी भगवान रामचंद्र की सेवा करने जाते हैं साथ में। तो वनवास से पहले दशरथ महाराज बहुत दुख ग्लानी अनुभव करते हैं, जैसे मृतदेह हो, रामचंद्र कलेजी का टुकड़ा, अभी वनवास, साथ में सीता, साथ में लक्ष्मण। तो रामचंद्र वनवास जाते हैं, प्रजा दुखी होती है, उनके पीछा करती है और अंत में बाद में श्रीमंत उनके प्रधानमंत्री वो भी साथ में होते हैं तो प्रजा को वापस भेजते हैं और चित्रकूट पर्वत पहुँचते हैं, गंगा पार करते हैं, अंगूठी देते हैं, चित्रकूट जाते हैं, संक्षिप्त में कथा कहना तो चित्रकूट पर्वत पर आई थिंक वहाँ भरत मिलाप होता है, और भरत मिलाप में भी लक्ष्मण गुस्से होते हैं कि भरत क्यों आ रहे हैं कई लोगों के साथ, अभी तक इतना दुख दिया कम नहीं है क्या, तो लड़ने के लिए और आ गए वगैरह। तो भरत महाराज आते हैं, पादुका मांगते हैं, पादुका ले जाते हैं, पादुका राज्य करेगी अर्थात रामचंद्र का ही राज्य रहेगा, मैं इन पादुओं का पूजा करने वाला रहूँगा, अर्थात रामचंद्र को राज्य के मध्य में रखते हुए राज्य करते हैं। तो यहाँ बाद में सारे रामायण सीता का हरण हुआ, जटायु का मृत्यु हुआ, और भगवान लंका जाने के लिए उत्सुक हुए, धनुषकोडी वहाँ समुद्र को चैलेंज करते हैं, समुद्र नहीं आता है तो भगवान रामचंद्र क्रोध से बाण लगाने को तैयार हुए, तो समुद्र तुरंत मूर्तिमंत होके भगवान के सामने प्रकट होता है, और भगवान उनको कहते हैं ब्रिज यहाँ से लंका तक एक पुल बनाना है, तो ऐसी कई कथा है गिरहरि के जो लक्ष्मण जी हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर लाके बड़े बड़े पर्वत लाके पुल बनाने में सहयोग करते हैं, और एक गिरहरी क्या बोलते हैं जो भी गिरहरी या स्क्वेर। तो हनुमान जी कहते हैं मैं बड़े बड़े बहुत बड़ा सेवक हूँ, तो रामचंद्र भगवान कहते हैं कि हर भक्त की सेवा जब वो अपनी पराकाष्ठा तक करता है, अपनी फुल शक्ति से करता है भक्ति, तो दोनों की भक्ति एक है, चाहे छोटी हो या मोटी, लेकिन अपनी सारी कैपेसिटी का उपयोग करके फुल ताकत लगा के, आप में हनुमान जी में ताकत ज़्यादा है तो बड़े बड़े लाते हो, और इनकी रेरी में कम है तो उनके मुताबिक उनकी पूर्ण ताकत लगी है, इसलिए बराबर है, हमें भी ये ताकत लगा देनी चाहिए भगवान की भक्ति में पूरी ताकत। कोई बुद्धिमान होता है CM CA BA होता है, कोई अनपढ़ होता है, तो अपनी अपनी ताकत से पूरी ताकत लगानी है, ये है उपदेश रामचंद्र भगवान का, भक्ति में पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। तो यहाँ परपोट का थोड़ा हम 3 मिनट बच गई है, तो परपोट में एक सुंदर बात बताई है जिससे मुझे गांधी जी याद आए कि अंग्रेज लोग बंदूक लेके और गांधी जी गीता लेके युद्ध करते हैं भगवान का सहारा लेके। तो प्रभुपाद जी परपोट में लिखते हैं कि माम अनुस्मर युद्धश्च, भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए युद्ध करना चाहिए, अर्थात युद्ध में भगवान होंगे तो उनकी जीत ही होगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयाभूति ध्रुवा नितिर्मतिर मम। जहाँ भगवान कृष्ण और अर्जुन जैसे भक्त वहाँ विक्ट्री विजय। तो युद्ध में हमें भगवान श्री कृष्ण को याद करना चाहिए। अगर वन टू वन बेसिस भी युद्ध हो रहा है, वहाँ की युद्ध भी हो रहा है, तो भगवान को स्मरण करके युद्ध करना चाहिए तो युद्ध होगा ही नहीं, युद्ध का सवाल ही नहीं पैदा होगा। दोनों पार्टी अगर भगवान के स्मरण में करती है युद्ध तो युद्ध होगा ही नहीं। तो भगवान की कृपा पर अवलंबित होकर मनुष्य को अपने शत्रु से युद्ध करना चाहिए, भले ही वह आधुनिक हथियारों से युक्त हो न हो। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, माम अनुस्मर युद्धश्च। अर्जुन कहा और भीष्मदेव द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण कहा, कुछ मुकाबला ही नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुन भगवान को याद, भगवान को अपनी स्मृति में रखते हुए भगवान कहते हैं वैसे करते हैं। भगवान ने कितने छल कपट करवाए फिर भी वो छल कपट नहीं समझा गया, क्योंकि भगवान है। ए किंग कैन डू नो रॉन्ग, कृष्णा कैन डू नो रॉन्ग। कृष्णा कुछ भी करें, चाहे गोपियों के साथ श्रृंगार रस से आनंद प्रमोद करें, कुछ भी करें, किंग कैन डू नो रॉन्ग। सो कृष्ण भगवान ने ये सब अर्जुन से करवाया जो गलत था, अब भौतिक दृष्टि से गलत था। पहिया उनका अर्कण का जमीन में खुप गया तो इस समय उनने कहा अभी ये समय मार नहीं मार सकते, क्योंकि उनका रथ पर वो नहीं है। लेकिन मरवाया, नरोवा कुंजरोवा द्रोणाचार्य की हत्या करवाई। हाथी मर गया या नर मर गया, हू नोस, नरोवा कुंजर, लेकिन अस्वस्थ वो मर गया, ऐसा बोलो। युधिष्ठिर को झूठ बुलवाई। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं और वो सत्य है, क्योंकि सामने असत्य था ही, सामने तो असत्य था ही, उनकी जीत होनी ही नहीं थी। तो कैसे भी भगवान को काम करना था, किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो बराबर डाइट ऑन डॉट, मैं रामायणी नहीं हूँ, सॉरी मैंने कुछ कथा कर ली, लेकिन ठीक है। कोई सवाल हो किसी को, एनी क्वेश्चन? हाँ मंत्र, ऑलवेज बी ऑन साइड ऑफ कृष्ण, वट एवर कृष्ण सेज देन देर इज नो डुप्लिसिटी। वट एवर शास्त्र साधु गुरु कृष्ण सेज देन देर इज नो डुप्लिसिटी, इवन दो इट मे बी डुप्लिसिटी। और कोई सवाल? यस जोर से बोलिए।
जैसे आपने कहा कि यहाँ पे अर्जुन होते हैं और यहाँ पे कृष्ण होते हैं, वहाँ पे
विराट रूप में क्या विराट वैराट युद्ध में अकेले थे शुद्ध भक्तों की विक्ट्री होती है भगवान शुद्ध भक्तों के हृदय में हमेशा वास करते स्फुरित होते हैं मैनिफेस्ट भगवत विदा भगवता तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि अंतस्तत गदाभृता अंदर भगवान भक्तों के हृदय में स्फुरित होते हैं राक्षसों के हृदय में होते हैं लेकिन स्फुरित नहीं होते वहाँ सोए होते हैं और भगवान भक्तों के हृदय में जागृत स्फुरित तो वहाँ विराट युद्ध में भगवान उनके साथ थे ही भगवत विदा भगवता अंतस्तस्त गदाभृत इसलिए उनकी विक्ट्री हुई अर्जुन की और कोई सवाल एनी अदर क्वेश्चन
हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद महाराज बहुत शुरुआत में आपने एक स्टेटमेंट बोली थी बहुत गहरी लगी वो बात कि भगवान अपनी लीला हमारे स्तर पर करते हैं तो यानी कि जो शायद हमें हमारे हमें समझ आए या हमारे बेहतरी के लिए तो फिर आपने बताया इसलिए भगवान हमारे बराबर बनकर आते हैं क्योंकि बराबरी में इसको महाराज थोड़ा सा और इसका तात्पर्य देंगे महाराज
यस भगवान के अनंत रूप हैं उसमें से निराकार ब्रह्म और परमात्मा हृदय में लेकिन ब्रह्म निराकार से हमें आनंद नहीं होता क्लेश होता है क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसां अव्यक्ता है गतिर दुखम देव अद्भिर व्याप्यते देहधारियों के लिए अव्यक्त स्वरूप की उपासना दुखदायी होगी सुखदायी नहीं होगी तो हम वैष्णवों का परम सौभाग्य है कि हमारे लिए भगवान व्यक्त हमारे बराबर होके आते हैं गोपियों के बराबर हुए अर्जुन के बराबर सखा हुए तो हमारा मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं मनुष्य शरीर ही उनका ओरिजिनल स्वरूप है भगवान का ओरिजिनल स्वरूप मनुष्य जैसा ही है अव्यक्तिम व्यक्तिम आपन्न अव्यक्त या अव्यक्तम अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्न मन्यते अबुदा जना जो बुद्धू लोग हैं वो कहते हैं कि ये कृष्ण व्यक्ति होके अभी अव्यक्त से पैदा हुआ अव्यक्त से व्यक्त व्यक्ति ते बुद्धू जन है तो भगवान का ओरिजिनल मूल स्वरूप है मनुष्याकृति दो हाथ वाले और ये दो हाथ वाले भगवान का जो स्वरूप है राम और कृष्ण बाकी के भगवान आते हैं तो वराह कच्चा मच्छा अवतार मत्स्य अवतार वगैरह अवतार तो मछली के साथ मनुष्य कैसे प्रेम का आदान प्रदान और मछली के साथ पानी में कैसे आप कितनी बार तो इसलिए ओरिजिनल मूल भगवान का रूप है वो है कृष्ण ग्वाला स्वयं रूपे स्वयं कृष्ण दुई रूपे स्फूर्ति स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति व्रजे गोप मूर्ति ओरिजिनल मूल स्वरूप भगवान का कृष्ण है और वो है व्रज में गोप मूर्ति तो ये गोप मूर्ति से हम सुंदर व्यवहार कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, मित्र बना सकते हैं, उनके साथ गोपियों का संग, समवयस्क गोपियां, तो व्यवहार और लीला कर सकते हैं, लीला का वर्धन कर सकते हैं, आनंद। लीला का अर्थ है आनंद करना और आनंद करवाना। लीला वर्धन का अर्थ है आनंद का वर्धन करना, आनंद करवाने का, करने का वर्धन। तो बराबर में होता है, कोई रंक है स्त्री झाड़ू लगाने वाली, और राजा का कुंवर है प्रिंस राजकुमार, तो ये दोनों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो सकता गुड, क्योंकि ऐश्वर्य युक्त है राजा का पुत्र राजकुमार। तो प्रेम के लिए समानता होनी चाहिए, और वो समानता हम कृष्ण से कर सकते हैं, कोई भी भाव से, मित्र भाव, सखी भाव, कोई भी भाव। भगवान कृष्ण हर भाव को आमंत्रित करते हैं, माधुर्य, मित्र, सख्य, वात्सल्य, शांत, कोई भी भाव। भगवान श्री कृष्ण की बराबरी में हम उनके साथ प्रेम कर सकते हैं। दूसरे अवतारों में थोड़ी सी इधर उधर कमी रह जाती है, मत्स्य अवतार, वराह, वामन, ब्राह्मण, द्वार्थ, ब्रह्मचारी बन के आए, तो कृष्ण इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है कि उनके साथ हम कोई भी रस का आस्वादन कर सकते हैं। आप और एलोबरेट करो, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए मैं लंबा चौड़ा नहीं करता हूँ। कोई और सवाल है? यस, क्योंकि रावण क्रिकेट था, रावण इतना बड़ा उनने गुनाह किया, सीता मैया को छल कपट से ले गए, तो भगवान के सामने राक्षसों की किया गिनती, इसलिए रावण का अंत आने वाला ही था। और रावण के सैनिकों का तो स्वाभाविक, जब रावण ही अंतवत्तु है तो उनके सैनिकों का भी भाग्य पहले से ही लुप्त हो चुका था, ये है भाव। और कोई? अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन छल कपट करने से पहले ही भगवान सब कुछ सही कर देंगे, भक्तों को छल कपट करना मना है। वी शुड बी वेरी सिंपल हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड, क्लीन, ऑनेस्ट। भगवान पर छोड़ दो, भगवान सब कुछ कर लेंगे, और करते हैं 100% केसेस में करते हैं, ये जन्म या दूसरा जन्म। ये जन्म में लगे कि छल कपट कर गया, दूसरे जन्म में भगवान सही कर देंगे। भगवान भक्तों का हमेशा कल्याण ही करते हैं, लगता है कि नहीं हो रहा है लेकिन हो रहा है। और कैसा एनी क्वेश्चन? सो थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, आप सब वैष्णव भक्त वृंद की, गुरु गौरांग की, गौर प्रेमानंदी।
जय प्रभु की जय।